सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार और विकास की नई रफ्तार पर। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। अरुणेंद्र जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहा है, जो इसी साल से शुरू होने की संभावना है।
बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। माउंटेन टनल 1 से लेकर माउंटेन टनल 7 तक, इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूंगा। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई का स्टेशन बीकेसी में, और 3 डिपोज बने हुए हैं।
अरुणेंद्र जी, अभी हमने रेल मंत्री की बाइट सुनी और जो बुलेट ट्रेन के शुरू होने की जो संभावना बिल्कुल सामने दिख रही है, वो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए मील का एक बड़ा पत्थर है?
बुलेट ट्रेन एक अपने आप में क्रांतिकारी तकनीक से बनाई गई रेल का प्लेटफॉर्म है, और जो इसमें रेल की डब्बे सुविधा और रेल का आर्किटेक्चर डिजाइन जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक इस्तेमाल किए गए चीजों से बिल्कुल दूसरी तरह से है। जो भी चीज इसमें करी जा रही है वो पहली बार करी जा रही है और बहुत ही उच्च स्तर की जा रही है। जो अभी आपने सुना टनल्स के बारे में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है, और आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन आपको देखने को मिलेंगे। जब एक डेडिकेटेड ट्रैक, जैसे हम फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं, एक डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक जब चालू होगा तो आप 1 घंटे 52 मिनट में मुंबई से अहमदाबाद साबरमती पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एकदम भारत उन देशों में आ जाएगा जैसे न्यूक्लियर क्लब में कहा जाता है, तो हाई स्पीड रेल क्लब में भारत की गिनती होनी शुरू हो जाएगी। और सब कुछ ये भारत सरकार के द्वारा है, क्योंकि जापान सरकार से जो आपसी तालमेल बैठा है उसके नतीजे हम सामने आते हुए दिख रहे हैं।
कल रेल मंत्री द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में रेलवे के बुनियादी ढांचे, यात्री सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। भारतीय रेलवे में अभी जारी सुधारों के संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं?
भारतीय रेल में सुधार हर वर्ष का करना एक इतिहास रहा है, और जो अभी चीज देखने में आ रही है कुछ वर्षों से, वो सुधार की जो गति है उसमें जबरदस्त प्रगति है, तो वो चीज मायने रखती है। उसका आप जितना उसमें निवेश करते जा रहे हैं तो आपको गति उस तरह से दिखती जा रही है। चाहे पटरी बिछाने की बात करें, संरक्षा प्रणाली की बात करें, नए डब्बों की बात करें, कोच के उत्पादन की बात करें, या कोच में तकनीकी बदलाव की बात करें, सिग्नलिंग की बात करें, सभी तरफ से आप देखेंगे। नए ब्रिजेस की बात करें, आप पम्बन ब्रिज की बात सुनी, कश्मीर में कनेक्टिविटी की बात देखी आपने, अब हम जा रहे हैं उत्तर पूर्व में और आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो गति मिली है सुधारों में, ये एक प्रशंसनीय है, और ये गति बनाने का ही 2026 में और इसको मजबूती लाने का एक बहुत जबरदस्त प्रयास की घोषणा कल की गई थी।
और कल की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को केंद्र में रखकर की गई थी। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत के नए स्लीपर ट्रेन के बारे में क्या कहा।
पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया, एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कम्फर्ट, वैसी सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट हो।
अरुणेंद्र जी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, हर किसी को बड़ी उत्सुकता से इसका इंतजार था कि ये ट्रेन कब शुरू होगी, क्योंकि जो लंबी दूरी के यात्री थे, जो ओवरनाइट जो डिस्टेंस है वहां के जो यात्री थे, उन्हें वंदे भारत जैसी सुविधा की उम्मीद थी और लोग उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शायद अब बहुत जल्दी हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर वंदे भारत स्लीपर सेवाएं दिखने लगेंगी।
वंदे भारत स्लीपर, दोबारा मैं कहूं कि वंदे भारत का एक अगला कदम है, क्योंकि बैठकर सीट पे जाना बात अलग है और रात्रि में शयनयान होते हुए जाना की बात ही कुछ अलग है। उसकी जिम्मेवारी, उसके रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग हो जाते हैं। जो आप देखेंगे वंदे भारत का इंटीरियर डेकोर होगा, एयर कंडीशनिंग, राइडिंग क्वालिटी है, सब में बहुत जबरदस्त सुधार आया है। और जो चीज सामने रखने वाली बात है कि अभी तक हम देखते थे वंदे भारत दिल्ली बम्बई दिल्ली कलकत्ता इस तरह से चला करती थी। रूट की चुना गया है वो कॉमन मैन के लिए चुना गया है, जो कि कलकत्ता से असम में न्यू बम्बई गांव वगैरह होते हुए स्टेशनों होते हुए उत्तर बंगाल के रास्ते जाएगी असम में। ये एक बहुत बड़ी दिशा परिवर्तन है जो साधारण नागरिक के लिए किया गया है। 11 डब्बे 3AC के, 2 डब्बे 2AC के, और बहुत बड़ी कसौटी भी है नई डिजाइन के लिए कि यात्री इसको कैसे पसंद करेंगे, क्योंकि नई डिजाइन बनती है जब तक उसको पैसेंजर उसको स्टैंप लगा दे तो इससे बड़ी खुशी एक डिजाइनर के लिए, एक रेलवे के लिए नहीं हो सकती, और जिसका शुरुआत हम देखने जा रहे हैं।
आपने जो अभी बात की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की, वो भी कल प्रेस वार्ता में जो प्राथमिकताएं गिनाई गई थी उनमें शामिल था, और उसके साथ सुरक्षा और समय पालन और आधुनिक कोच की बात भी आपने की थी, तो इन सब पर कल की प्रेस वार्ता में विशेष रूप से जोर दिया गया था। क्या यह संकेत करता है कि सरकार अब रेलवे सुधारों को एक साफ रोडमैप और समयबद्ध लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा रही है?
रोडमैप तो हर जगह होता है किसी भी आप संस्था में, लेकिन इस बात में यहाँ खूबी है कि आप रोडमैप बना के उस पर अमल कर रहे हैं। आपने कहा था 2025 के आखिर तक वंदे भारत का शयन डिजाइन रोल आउट कर देंगे, और रोल आउट हो रहा है। ये जो रोडमैप बनता है उस पर अमल किया जाता है, उस पर बहुत बड़ी पीछे मेहनत और लगन होती है, कमिटमेंट होता है, जो कि आपको रेल में दिखाई दे रहा है। रेल के अधिकारी, रेल के कर्मचारी और ये जितना फैक्ट्री में बन रहे हैं वहाँ के लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है। ये कमिटमेंट दिखाता है कि रेल सपना जो भी करते आ रहे हैं उसको सुधार करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है और वैश्विक स्तर पे लाने के लिए आवश्यक है। और जब हाई स्पीड ट्रेन आ जाएगी तो ये एकदम जबरदस्त उछाल फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हाई स्पीड की तकनीक है उसका हम देखेंगे कि अडॉप्शन जो है बाकी डिजाइनों में भी होता हुआ दिखेगा।
रेलवे सुरक्षा पर अक्सर चर्चा होती रहती है और कवच रेल सुरक्षा प्रणाली के बारे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा।
मैं कवच के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का सिस्टम है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विश्व में कई समृद्ध देशों ने जहां करीब 20 से 30 वर्षों में लगाए और हमसे आधे परिमाण के उनके रेलवे नेटवर्क्स थे, वहां पर भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत एक नई प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, भारत में बनी, भारत में डिजाइन हुई, भारत में मैन्युफैक्चर हुई, वो प्रणाली आरंभ की।
अरुणेंद्र जी, ये कवच जो प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली है, इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
देखिए, आप जितने नए डब्बे बन रहे हैं और जो नए डिजाइन के हैं इसमें कवच लग के तो आएगा ही, तो कवच डब्बों में लग गया है, इंजन में लग गया है। अब जो जिस रूट पे कवच है, अगर कलकत्ता से असम वाले रूट पे जो ट्रैक के साइड में कवच सॉल्यूशन अब जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब अगर वहां ट्रैक पे ना लगे तो फिर कवच का इतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जब डब्बे तो मल्टी यूज के लिए होते हैं, कहीं भी आप चला सकते हैं, तो इसलिए कवच प्रणाली लग के आ रही है और इसका टेस्टिंग भी किया गया होगा कवच प्रणाली का नए डब्बों में, जिससे कि ये गारंटी मिले कि इसका पूरा उपयोग समय आने पे हो सकेगा। तो कवच अपने आप में एक रूप परिवर्तन है और ये शांत रहे उतना ही अच्छा है, लेकिन जब मौका आए तो इसका आप जब देखेंगे कि अपने आप गाड़ी रुक जाती है तो उस समय ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसका उम्मीद तो ये कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है पैसेंजर के लिए कि अगर आपकी गाड़ी में कवच सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है।
भारतीय रेलवे में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए अभूतपूर्व निवेश को अगर हम समग्र रूप में देखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कनेक्टिविटी, सुरक्षा और क्षमता तीनों क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे में ठोस और दूरगामी सुधार हुए हैं?
कनेक्टिविटी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तर भारत में कनेक्टिविटी, पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी, और साथ साथ कनेक्टिविटी में आप देखेंगे सबर्बन ट्रेन्स जो है उसमें है। तो ये सब तो रेलवे का काम ही है कि लोगों को दूसरी जगह पहुंचाना, जिस रास्ते में ओवर क्राउडिंग है वहां पे ज्यादा ट्रेनें चलाना जिससे लोगों को सीट मिल सके, मेले के समय में जब या विशेष जरूरत के समय ये गाड़ियां भी चलाई जाती हैं और लोगों को गंतव्य स्थान पे पहुंचाया जाता है। और भारतीय रेल ये एक मूल साधन है इस देश में, सबसे सस्ता साधन है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए।
जो हम नई सस्पेंशन प्रणालियों की बात की जा रही है रेलवे में, आधुनिक कोच डिजाइन की बात आपने भी की, और जो ये सुरक्षा मानक हैं ये भी अब पहले के मुकाबले काफी उन्नत हैं, बेहतर हैं, तो इनको जिस तरीके से अपनाया जा रहा है उससे क्या ये संकेत मिलता है कि सरकार अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास कर रही है?
जी बिल्कुल, आप जैसे सुरक्षा के मापदंड देखें, जब आप नई तकनीक लेके आते हैं तो सुरक्षा के मापदंड अपने आप जो है ऊंचे हो जाते हैं और उसको पाने के लिए आपको फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जैसे नए डब्बे बने, सुरक्षा मापदंड बढ़ गए तो फिर आप प्राप्त करिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो और आप मापदंड बनते जाते हैं, नई पटरियां बिछाते हैं, गति आप बढ़ाते हैं, 180 किलोमीटर के अगर ट्रैक आप बना दिए तो उसके मापदंड अलग हो जाते हैं, मेंटेनेंस के मापदंड बहुत कड़े हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप रोजाना गाड़ी पटरी को मेंटेन करेंगे या रोजाना डब्बे को मेंटेन करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, मेंटेनेंस भी कम होनी चाहिए, खर्चा भी कम होना चाहिए, तो सारे तरफ से आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि तकनीक अच्छी देखे और उसको गाड़ी को खड़ा रखें और एग्जामिन करते रहे, वो बात तो सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंजीनियर्स के लिए सभी दिशाओं में कि भाई जो नई तकनीक से ज्यादा आउटपुट हमको मिले, और उसी दिशा में सरकार आगे काम कर रही है इतने समय से।
और 2026 को ध्यान में रखते हुए यात्री केंद्रित पहल है, जैसे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और डिजिटल सेवाएं हैं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, क्या ये हम कह सकते हैं कि रेलवे अब भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को तैयार कर रहा है?
ये भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तो हमेशा रेलवे तत्पर रहती है और ध्यान में रखती है। टूरिज्म को आप देख लें और नए नए ट्रेनों को चलाने, हर साल नई ट्रेनें चलती हैं वो उसका ध्यान रखने, डिजिटल इम्प्रूवमेंट रहता है, जैसे अभी आपने देखा कि IRCTC ने आधार लिंकिंग सिस्टम रिजर्वेशन में लगाया, चार्ट भी आप 6-8 घंटे पहले बनने लगे, पहले 4 घंटे पहले बना करते थे, तो ये सब धीरे धीरे करके जो ग्राउंड लेवल में तकलीफ होती है वो कम की जा रही है। और समयबद्धता बहुत जरूरी है कि अगर आपने ट्रेन का टाइमिंग अनाउंस किया है तो चाहे बरसात हो, चाहे फॉग हो, चाहे आगे कोई और गाड़ी हो, लेकिन आप समय पे पहुंचे। और समय आप देखें, मान लीजिए एक ट्रेन जैसे चलती है कलकत्ता से गुवाहाटी के लिए कितने स्टेशनों पे रुकती है, और सभी स्टेशनों पे ये समय सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलकत्ता से सही समय छुट्टी और गुवाहाटी सही समय पहुंच गई और बीच में देर होती रही, जल्दी होती रही, उससे फायदा नहीं होता, क्योंकि सभी यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसी दिशा में रेल प्रशासन जो है पहले भी करबद्ध था, लगा हुआ था, और अभी भी इस पर विशेष जोर दिया जाता है।
जी, रेलवे बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार से रोजगार पैदा करने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि को किस प्रकार एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास मॉडल के रूप में देख सकते हैं?
देखिए, रोजगार तो रेलवे पैदा करती ही है, पहले रेल जाती है उसके बाद रोजगार साथ साथ चला आता है, पटरी बिछाने में रोजगार पैदा शुरू होने हो जाते हैं, सड़क बिछाई जाती है साथ में और उसका जितना रेल का सामान है वहाँ लगाया जाता है, तो जैसे ही पटरी आती है तो रोजगार का घंटी तो बजने लगती है। उस समय जब ट्रेन आती है तो लोग आते हैं, स्टेशन डेवलपमेंट किया जाता है, उस जगह का इलाके का बढ़ जाता है। एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण आप देखिए रीजनल रैपिड रेल सिस्टम का जो दिल्ली से मेरठ का है, रास्ते में इलाके में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि लोग उस रास्ते पे ही जाना चाहते हैं, तो जहां जहां पटरी रेलवे की जाती है तो डेवलपमेंट तो एक नेचुरल आउटकम है जो कि और कॉमन मैन के लिए आउटकम, ये नहीं कि वरिष्ठ लोगों के लिए हो, साधारण व्यक्ति के लिए वो दिखता है। सिमिलरली टूरिज्म तो बहुत जरूरी है, जहां जहां टूरिज्म वाली चीजें हैं वहां रेल का कनेक्शन हो जाए तो आप और यात्री बढ़ने लगते हैं। आप कटरा का देख लीजिए, बिल्कुल नक्शा बदल चुका है वैष्णो देवी के लिए। ऐसे आप कश्मीर में आप देखने जाएंगे, आगे कश्मीर और बारामूला और गुड़बल तक की बात सुनने लगे हैं। ये सब चीजें रेलवे का योगदान है, रेलवे ही एक बहुत बड़ी नेटवर्क है भारत में जो कि सभी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ती है। इसमें कभी भेदभाव तो है नहीं, इसलिए इसके आधारभूत ढांचे को आगे मजबूत बनाने के लिए सरकार बहुत ज्यादा कटिबद्ध है।
जी, तो श्रोताओं, जैसा कि अरुणेंद्र जी ने बताया, भारतीय रेलवे में हो रहे बुनियादी ढांचागत सुधार न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। अरुणेंद्र जी, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में